आज का टॉपिक है ईश्वरीय पालना। देखो दुनिया में भी लोग कहते हैं जिनके साथ ईश्वर है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या ईश्वर हमारे साथ रहेगा? ये पूछने की बात है, सोचने की बात है। लेकिन देखा कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा साधारण व्यक्ति थे, गृहस्थी थे, बिजनेसमैन थे, साधारण जीवन में रहते हुए भी सर्वशक्तिवान ईश्वर परमपिता परमात्मा ईश्वर ने उनके माध्यम से जो कार्य किया वो कभी भी कोई सोच ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य को आप समान बना के लेके गया, जैसे बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनो। तो निराकार बाप एक परमधाम में रहता है, हम इस सृष्टि पर रहते हैं, तो प्रश्न आता हम बाप समान कैसे बने। तो बाबा ने, शिव बाबा ने एक सैंपल बना के दिखाया, इस संसार में सब कुछ करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, भगवान इस सृष्टि पर आकर कैसे आप समान बनाता है। तो ईश्वर ने आके पिताश्री को देखो कैसे साक्षात्कार कराया, कैसे हर प्रकार का ज्ञान दिया, अपना जीवन में जो कुछ है सब कुछ समर्पण कराया, अपना कभी भी नहीं कहा, परिवार वाले है, बिजनेस है, अंत तक भी मेरा कुछ नहीं, तन मन धन, धन भी कभी नहीं कहा। जो भी संपत्ति थी दादियों को बहनों को ट्रस्टी बनाकर उनको समर्पित कराया, अपना कुछ भी नहीं कहा और अपने आप को ज्ञान योग से संपन्न बनाया, बच्चों की हर प्रकार की सेवा किया। किसी को ऐसा नहीं लगा वो शिव बाबा है, नहीं, अगर कोई रात को सोए हुए है ठंडी लग रही है तो बाबा हर एक के कमरे में जाके देखता था, खाना खाते समय भी बेगरी पार्ट भी आया तो भी बाबा कहता था पहले बच्चों को खिलाओ, बाबा देखता था फिर मैं खाऊंगा, हर प्रकार की बच्चों की पालना किया। तो ये किसने किया? बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि मैंने किया, मैं करता हूं। करण करावन हार, ईश्वर इस धरती पर आकर मनुष्य के द्वारा कैसे सेवा करता है उसका एक सैंपल दिखाया हमारे सामने। ऐसे नहीं हम पढ़े लिखे चाहिए, पैसे भी चाहिए, गृहस्थ नहीं संभालना है, बिजनेस छोड़ना है, गृहस्थ छोड़ना है, साधु सन्यासी बनना है, जंगल चप छोड़ के जंगल में गए, जरूरत नहीं। संसार में रहते, गृहस्थ में रहते, बिजनेस करते हुए भी हमारे सामने का एग्जाम्पल दिया कि नंबर वन। आज तक देख लो आप, बहुत लोग गए, अभी अभी देखो पुटपत्रिका सत्य साई बाबा ने शरीर छोड़ा, प्रमुख स्वामी करके स्वामी नारायण के उन्होंने शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण गए, राम गए, वो सब कहां गए? कितने धर्म गुरु आए, कितने आत्मा है शरीर छोड़ के गए, कहां गए वो? परमधाम गए, उन्होंने जन्म लिया दोबारा। उनके जो फॉलोअर्स है तो उनकी सेवा कौन करेगा, कहां गए, कौन करेगा? अगर उनको भगवान कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ठीक है एक दफा सुनाई, फिर कहां गया? तो यहां देखो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर स्वयं आके साकार ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने के बाद भी उनको अपने साथ कर्मातीत बना करके, आप समान बना करके लेके गए, सूक्ष्म तन में रखा और उनके द्वारा ही इस सृष्टि पर आज तक भी 80 सालों से, आज तक भी उनके द्वारा ही इस सृष्टि पर जो भी बाबा के बच्चे हैं उनकी पालना कर रहा है। ऐसा कहीं भी है? कितने लोग गए, कितने धर्मगुरु गए, सबने कहा ये है वो है सब कुछ है, लेकिन वो कहां गए? कभी सोचना चाहिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं ईश्वर आके कैसे कार्य करता है। आज तक भी ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के गए तब लोग कहते थे इनके पास अभी कौन है, कहां भगवान है? उसके बाद आज भी देखो कितनी वृद्धि हो रही। तो ये सब कौन कर रहा है? तो ये आज किसी को पता चले, कोई सोचे ईश्वर इस सृष्टि पर आकर कैसे क्योंकि गीता में भी है अर्जुन के सामने दुनिया के थी भगवान श्री कृष्ण था, अर्जुन देख रहा था श्री कृष्ण को, तो भी कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। यहां भी मनुष्य साकार को देखते हैं, स्थूल शरीर को देखते हैं। बाबा भी कहता है बच्चे बाप बच्चों के दिल में कौन है, बाप के दिल में कौन है, तो ये अव्यक्त मिलन है। यहां भी अगर आप जब बाबा आता है कि 10 मिनट देखो दृष्टि देता है कैसे, अगर उस समय आप अव्यक्त स्थिति में रहो, अव्यक्त स्थिति माने शरीर शरीर का भान नहीं, क्योंकि अव्यक्त मिलन है ये। आत्मिक स्वरूप में अगर आप स्थित होते हो तो आत्मिक स्वरूप अपने आप नहीं होता है। जैसे डॉक्टर को घर में जब आता है तो वो पिताजी है, जब कपड़े पहन के हॉस्पिटल में जाता है तो उसको अवेयरनेस है, स्मृति है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे पेशेंट को देखना है, ऐसी बीमारी की ये दवाई देनी है, ये सब अपने आप स्वभाव संस्कार जागृत रहता है। तो जब हम अव्यक्त स्थिति अर्थात जब बैठते हैं मुरली सुनने के लिए, योग करने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, उस समय आत्मिक आत्मा अव्यक्त शरीर व्यक्त, अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं वो भी अपने अपने होते हैं। जैसे इनको देखते ये भाई जी है, बहन जी तो नहीं, भाई जी तो दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा भाई है, उसको हम 2-3 प्रश्न पूछते हैं, भाई जी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, तब वो समझ में आया ये कौन है। जैसे आत्मिक स्वरूप में स्थित होना मीन्स 5-10 मिनट सिर्फ आत्मा का ही चिंतन चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी एक अलग विधि है। शिव बाबा ने आके ये राजयोग क्या सिखाया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा कौन सा सिखाता है, अंतर है। तो यहां अगर आप चिंतन करेंगे, आत्मा का चिंतन करते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, बुद्धि खाली है, बुद्धि के अंदर यदि योग में बैठू तो व्यर्थ विचार आते, विकल्प आते हैं, कहां से आते हो, बुद्धि खाली है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग उसको कहा जो शिव बाबा ने आके सुनाया, जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सिखाया। तो मन और ये बुद्धि, ये दोनों को एक करना है, तो चिंतन करते समय ये दोनों चाहिए, ये दोनों एक होना, तब कहेंगे एकाग्रता। उसके अंदर कोई भी देहधारी सेवा किसी की भी याद नहीं आती है, सब कुछ हम देह हर देह के पदार्थ को सब कुछ भूलकर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, उसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। उसके लिए 5 प्रश्न बनाया, जब भी आप बैठते हो योग करने सवेरे और शाम को, तपस्या कहते हैं उसको, याद अलग है, योग अलग है, तपस्या अलग है। तपस्या करते हम विकर्म विनाश करने के लिए, याद करते हैं कि मेरे से दोबारा अभी पाप नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशन, अभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तपस्या आत्मनिराकारी स्वरूप में स्थित होकर, तो जब बैठते ही आत्मा का चिंतन चाहिए कि मैं कौन आत्मा हूं, आत्मा कौन सी आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं, तो उसका चिंतन चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूं। फिर मेरे 7 गुण है, एक एक गुण अपने आप को पढ़ाना पड़ता है, जानते हैं हम लेकिन वो जागृत नहीं है। अगर आत्मिक आत्मा का चिंतन करते हुए अव्यक्त स्वरूप माना 5-7 गुणों को अपने आप को पढ़ाओ, मैं कब संपूर्ण पवित्र था, अभी तो नहीं हूं, जब मैं परमधाम से आया था शुरू में था, अभी अंतिम समय आया, अब मुझे दोबारा वापस जाना है, तो उसी स्वरूप में स्थित होकर जाना है जैसे मैं आया था। तो एक एक गुण अपने आप को पढ़ाना पड़ता है। फिर मेरे कर्म, मैं शरीर में रहकर क्या करता हूं, शरीर को चलाता हूं, योग में बैठे इधर देख रहे हो इधर जा रहे हो, कोई आ रहा है जा रहा है, नहीं तो देख लो बाबा के समय पर जब ये अव्यक्त मिलन है, लोग सारा विश्व देखता है, अरे इन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ये भगवान को मिलने बैठे हैं, तो कोई कैमरा आया हाथ हिलाते हो जैसे दुनिया वाले करते हैं पिक्चर में और किधर, यहां अव्यक्त शरीर का नाम ही नहीं है। जैसे चप्पल आपने बाहर छोड़ा, शरीर बाहर छोड़कर अंदर घुसते हैं, ये समझ ही नहीं है। दुनिया देखती है, दुनिया क्या सिखाएंगे, एक है मुख से ज्ञान सुनाना, एक है अपने आचरण से सुनाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर। इस हॉल में बैठे हुए सारी दुनिया अज्ञानी, कितने लोग साधु संत अज्ञानी कौन कौन दिखता है, सबके अंदर अभी भावना है, लेकिन भावना कौन दिखाएगा, आचरण से हमें दिखाना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान सुनाऊं तो नहीं मानेगा कोई, इनके आचरण क्या है। अगर इस हॉल को वो देखे, जब बाबा आते तो हर एक व्यक्ति देखता है, कहते मैंने आपका देखा है, हर एक बोलते हैं, लेकिन हमें हाथ हिलाते रहे, कोई कुछ करता रहे नहीं, अव्यक्त तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस, न एक का भी आंखें भी बंद नहीं है, क्योंकि कैमरा वाला देखता है, पूरा दिखाता है, कोई इधर देख रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई बात करते हैं नहीं। लोगों को हम क्या सिखाएंगे, मुख से सिखाने की जरूरत नहीं है, संगठित रूप में सबका आचरण और संकल्प अगर एक जैसा है तो दुनिया के कोने तक ये वाइब्रेशंस पहुंचता है। तब कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स, आवाज यहां से यहां जाता है, संकल्प शक्ति है, इसको कहते हैं योग की शक्ति, साइलेंस पावर। तो वो जब बाबा आता है, बाबा ने ऐसे बना के देखो, बाबा भी आता है आज भी, कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस कर देता है, अपने वाइब्रेशन कुछ देता नहीं, किरणें दिखाई दिया किसी को, किसी को किरणें दिखाई दिया नहीं, वाइब्रेशंस बाबा के संकल्प शक्ति से 10 मिनट देख लो, एक भी खांसी भी नहीं किसी को, एकदम साइलेंस करता है। अगर जो हम बैठे हॉल में सभी 10 मिनट 10-15 मिनट ऐसे अगर स्थिर होकर के अव्यक्त स्थिति में सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करता रहे, तो ऐसे अव्यक्त वातावरण यहां भी और बाहर भी इसके वाइब्रेशंस जाते हैं। ये आज दुनिया में शांति स्थापन करो कहते हैं, तो शांति कहां से आएंगी, कैसे आएंगे वो? आज बाबा ने कहा अगर हमारे मन में गलत नेगेटिव विचार चलते हैं और आप सेवा करते हो, उत्तीर लगेगा नहीं। अगर हमें क्रोध आता है और मैं किसी को कहता आप गुस्सा नहीं करो, तीर लगेगा, समझ में आएगा उनको, वाणी के अंदर ताकत है, शब्द है, ताकत नहीं। तो इसके लिए बाबा चाहता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर आप समान बनाया, आचरण करके दिखाया, कर्म करके दिखाया, हर प्रकार के कर्म किया बाबा ने, ऐसे ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं सुनाया, सवेरे ज्ञान सुनाया, बच्चों की सेवा किया, मुरली सुनाई, हर एक 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 बच्चों को देखकर, इवन अव्यक्त बाबा आते थे ओम शांति भवन में, एक एक विदेशी को बैठकर बाबा 7 दिन का कोर्स कराता था, बच्चे ये आत्मा है, ये शरीर है, आत्मा के अंदर ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार है, आधा आधा घंटा एक एक व्यक्ति से, शुरू में जब थोड़े थे, इतना विस्तार से बाबा ज्ञान सुनाता था, पालना करता था, साकार में भी स्थूल में भी बाबा लेटर भी लिखता था, इवन किचन में जाकर सब्जी काटने के लिए बच्चों के साथ कई सेवा करना, स्थूल भी सेवा करता था। तो ये कौन कराता था इतनी एज में भी, तो वो ईश्वर इस सृष्टि पर आकर करण करावन हार हम कहते हैं, उसने कैसे कर करके एक सैंपल बनाया, तो जो सैंपल बनाया उसने जो सिखाया, हम बाबा से मिलने आते बाप दादा से, तो हमारे भी ऐसी आचरण चाहिए, उसको कहते सन शोस फादर। निराकार को हम फॉलो नहीं कर सकते, पता ही नहीं है उसने साकार तन में आकर कैसे कर्म करके दिखाया, हम वर्णन करते हैं बाबा के सामने भी बहुत सारी बातें थी। बाबा कभी कभी मुरली में कहता है बच्चे आपको योग करना सहज है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाप के साथ इतना 350 उस समय बच्चे थे, तो उस समय बाबा के पास कितनी चिंता और बेगरी पार्ट, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को खाना खिलाना है, ये करना है, सोने के लिए चाहिए, ये चिंता कितनी, बच्चे बाप पर कितना मामला है, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, इतना फ्री कर देता है बच्चे, बाप से भी बच्चे बड़े आगे रखता है। लेकिन बाप के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी शुभ बाबा शक्ति देता, कर्म कराता था, वो बाबा मानता है, बाबा कहता भी है मैं भी खाना खाने बैठता हूं, सोचता हूं भूल जाता हूं, कोई और बात आती है, जिम्मेवारी है, तो बच्चों को किसकी चिंता है। बच्चे भी कोशिश करो, जैसे बाबा अपना अनुभव बताता है, मैं भी प्रयत्न करता हूं चलते फिरते खाना खाते कि बच्चों को भी पुरुषार्थ इसको का प्रयत्न मनुष्य अगर करे, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन लक्ष्य चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनो, बाबा ने एग्जांपल दिया और बना के दिखाया। सन्यासी नहीं, घर बार छोड़ा नहीं, बिजनेस छोड़ा नहीं, घर का बच्चों को देखना नहीं, कुछ भी नहीं करना नहीं, गृहस्थ की सब कुछ सेवा करते हुए भी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए कहा सन्यास धर्म आधा कल्प के बाद आया है। सबसे भारत में अनादि कौन सा है? गृहस्थ धर्म है। लेकिन गृहस्थ के अंदर उसको और एक शब्द ऐड करना चाहिए, पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी वही अपवित्र गृहस्थ हो गया है। तो उसको बाबा आकर के परिवर्तन करता है, ये ज्ञान देता है कि अगर आप अपने को आत्मा समझ करके गृहस्थ में चलते हो तो मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा घर नहीं, कुछ भी हम लेके नहीं आए, न जाते समय कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। एक दिन आप बैठ के अपने आप से पूछो, इस जीवन में आराम से बैठ के पूछना, मेरा क्या है ये शरीर, मेरा कह सकते हो आप? एक मिनट रह सकते हो ज्यादा टिकट आने के बाद? धन आपका कह सकते हो? पति आपका, बच्चे आपको कह सकते हो? घर आपका है? क्या चीज आपकी है? समझो, नहीं तो हमारे हर भाषा में आता है हर शब्द, ये मेरा है, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, मेरा जमीन, कहां से जमीन लाई, कितनी लड़ाई झगड़ा, आज समझ नहीं है तो मेरा क्या है। लेकिन हमारी एक चीज हमारी है, वो चीज हम न छोड़ सकते हैं, न वो चीज हमको छोड़ती है। क्या है वो, क्या चीज है? हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, न वो हमको छोड़ती है। जहां भी आप जाओ हमारे साथ वो एक चीज हमारी है, वो क्या? हमने किए हुए कर्म। इस शरीर में आकर मैंने जो जो कर्म किया वो सब आत्मा के अंदर भरे हुए हैं। उसी आधार से उसको कहते हैं पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, महात्मा। तो मैं कौन सी आत्मा हूं समझना है, और ऐसे कर्म भरना है अभी कि मेरे से ऐसे कर्म न हो। ये बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं ईश्वर ब्रह्मा मुख से हमको ये पढ़ा रहा है, बच्चे अब ऐसा कर्म न हो, ऐसे विचार न हो, ऐसे बोल न हो। सामने वाला करेगा वो गुस्सा करेगा, वो दुख देगा, उसका अपना स्वभाव संस्कार है। आप उनको फॉलो करेंगे कि बाबा को करेंगे? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ रहे हो कि किसी मनुष्य के विद्यालय में आ रहे हो? नहीं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, हाँ वो करेगा, उनको अपना धर्म है। इवन वो बाबा का बच्चा बनने के बाद भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहा, सभी राजा नहीं बनेंगे, प्रजा बनने वाले भी है, दास दासी बनने वाले भी है, हमको किसको फॉलो करना है? कभी कभी कहते ये इतना पुराना होने के बाद भी ऐसा करता है, हाँ वो करेगा, उसका जीवन का लक्ष्य अलग है। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य किस क्या है? ये अपने को देखना है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जा रहा है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वयं को, ये ज्ञान स्वयं को। तब शिव बाबा ने आके देखो ब्रह्मा बाबा को ऐसा सैंपल बनाया, आज भी अपना तन नहीं होते हुए भी दूसरों के तन में आकर, दोनों कोई भी संस्था में जाओ, भारत में सारे विश्व में जो भी शरीर छोड़ के गए, धर्म गुरु हो कोई भी हो, एक भी दोबारा आके अपना ज्ञान नहीं सुनाता, न गीता, न रामायण, न महाभारत, न किसी धर्म में। तब का एक ही कर्मातीत होके गया है, संपूर्ण आत्मा बन गया। तो वो शिव बाबा ने संपूर्ण, शिव बाबा ने, ईश्वर ने आके अपने समान एक सैंपल बना के दिखाया, और आज भी 80 सालों के बाद भी आज भी तन में आकर बच्चों की पालना करते हैं। तब कहते हैं भारत में भगवान को माँ बाप कहते हैं, सारे विश्व में भगवान को बाप कहते हैं, गॉड फादर। یا فادر نہیں، ماں باپ. ماں باپ بچوں کو جنم دینے کے بعد ان کی پالنا کرتے ہیں، سنبھال کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے پڑھاتے ہیں. بابا بھی کہتا ہے بچے تمہیں ورثہ دے کے جاؤں گا، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. جیسے برہما بابا کو ساتھ لے کے گیا، چھوڑ کے نہیں گیا، اور وہاں سے بھی اپنے ساتھ رکھ کر کے باپ دادا دونوں مل کر کے آج بھی سارے وشو کی سیوا کر رہے. آپ ایک ایک بچے سے پوچھو، کسی بہن سے بھی پوچھ لو، سینٹر آج اتنا بن رہے بڑے بڑے میں سینٹر کون بنا رہا ہے؟ وہ کہتے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بابا کیسے کراتا ہے. ایک ایک سینٹر والوں سے پوچھو آپ کبھی کسی کو، بہن جی اتنا بڑا سینٹر کیسے بنا؟ کہتے ہمارے پاس ایک لاکھ روپے بھی نہیں تھا. آج دیکھیں گے دو تین منزل کا اتنے بڑے بڑے ہزار بھائی بہن بیٹھ سکے، اتنے بڑے بڑے سینٹر بنے، کس نے بنایا؟ ایشور کیسی بچوں کے دوارا اپنے بچوں کی پالنا کرتا ہے. ایک بچے کو سمپورن بنایا کہ اس کو تن چاہیے، اس سرشٹی پر کچھ کام کرنا ہے تو اپنے جیسے ویکتی چاہیے، کسی کے تن کے دوارا نہیں. لیکن آپ سمان بنا کر ان کے دوارا آج بھی اس سرشٹی کو، کلیگ کو سورگ بنانے کے جو پریورتن کی جو ودھی چل رہے بابا کی، وہ آج تک چل رہی ہے. اور بابا نے ابھی بھی کہا دیکھنا، میں آتا رہوں گا، انت تک بچوں کے ساتھ ہوں، اور یہاں ہی ملیں گے، کیونکہ شیو بابا کا وعدہ ہے بچے میں بچوں کے ساتھ انت تک ہوں، تھوڑے سمے کے لیے نہیں، اور اپنے ساتھ لے جاؤں گا آپ سمان بنا کر کے. چاہے آپ سو اچھا سے پریورتن کرو، نہیں تو کرم بھوگ بھوگ کر کے بھی مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا ہی ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. پتت آتما کو پاون بنانا، چاہے یوگ بل سے بنو، محبت سے بنو، نہیں بنتے ہو، نہیں سنتے ہو، نہیں سنو، تو کرم بھوگ ہے. سمے آیا تو کرم بھوگ بھوگ کر کے بھی، کیونکہ کرم ہم ایسے لے کے نہیں جا سکتے ہیں، جیسے آتما آئی تھی ویسے جائیں گے. تو ہم نے کیا وکن، آپ کہیں گے بابا اپنے آپ کرے گا، بابا آپ کرو، نہیں بچے آپ نے کیا، میں صرف ودھی بتاتا ہوں. تب اس کا نام ہے بھاگیہ ودھاتا ہے، بھاگیہ بنانے کی ودھی بتاتا ہے. بچے کرنا آپ کو ہے، اور جو کرے گا وہ پائے گا، کیونکہ سرشٹی میں ایسا نیم ہے. دیکھو کھیتی میں آپ ایک گیہوں کا بیج بولو تو چاول نہیں اگے گا، گیہوں ہی اگے گا. واٹ یو سا سو شل یو ریپ، جو کریں گے. اگر ہم غلط کرے، بابا معاف کرو، بابا یہ پاپ درد ٹھیک کرو، نہیں بچے آپ نے کیا، اس کی ودھی بتاتا ہے. ایون برہما بابا کو بھی کہا، بچے کھانسی آتی ہے، یہ آپ کی کھانسی ہے، آپ کو آپ کے تنوے میں آتا ہوں، اس کا بھاڑا دوں گا، لیکن آپ کو اپنے پرشارتھ کرنا ہے آپ کا کرم بھوگ کو مٹانے کے لیے. تو بابا کہتا ہے میں بھی سویرے اٹھ کے سادھنا کرتا ہوں، بچوں کی سیوا تن سے من سے، دھن سمپتی تن بھی دیا. کبھی بابا نے کہا میرا؟ یہ بابا کا تن ہے، لون دیا ہوا ہے، میرا نہیں کہا. کبھی بھی بابا نے کہا دھن میرا ہے، من بھی سیوا پر، انت تک بھی، تن سے من سے دھن سے. تب ہم کہتے ہیں اس ایشوریہ وشودیالے کے ایک مہامنتر ہے، ہم اپنے تن من دھن سے اپنے لیے ہی بھارت کو سورگ بنانے کی سیوا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے ہی. کیسے؟ اپنے تن من اور دھن سے. تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اگر ستیوگ میں ہیلتھ ویلتھ ہیپینس تینوں ورثہ ہے، کیا یہ سب بھی بچوں کو ملے گا؟ سب بھی بچے ہیلدی ویلدی ہیپی بنیں گے؟ تو سبھی بابا کے بچے کیوں نہیں بنیں گے؟ باپ ورثہ نہیں دے گا؟ پھر اس کو جوڑا بابا نے، نمبر وار پرشارتھ انوسار، کوئی راجہ ہے، کوئی پرجا ہے، کوئی رائل فیملی ہے، کوئی داس داسی ہے، پرشارتھ ہے. تو وہ پرشارتھ ہے تو برہما بابا نے کر کے دکھایا، شیو بابا نے ان کے دوارا بچوں کو سب کچھ کر کے، کرم کیسا کرنا ہے. تن میرا نہیں، یہ شیو بابا کا تن ہے. دھن میرا نہیں، کبھی اپنا دھن نہیں کہا، یہ بھگوان کی سیوا میں لگاؤ. ایسے نہیں کہا آپ کچھ کھاؤ نہیں پیو نہیں، آپ سادھارن رہو، सब कुछ दान करो, नहीं। बच्चे अपने को व्यवस्था बताए, अपने को भी नीट क्लीन व्यवस्थित रखो, न ऊंचा न नीचा, साधारण रहो। अपने शरीर को भी संभालो, जीवन को भी संभालो, परिवार की भी सेवा करो, ऐसे नहीं परिवार को भी छोड़ो और ईश्वरीय सेवा करो। किसके लिए? भाग्य का। उसको ये शरीर छोड़ते ही कैसा जीवन मिलेगा? यहां जो आपने कमाई करके रखा वो जाते समय लेके नहीं जा सकते हो, वो धन ये तन वहां भविष्य में काम में नहीं आएगा। तो भविष्य के लिए जमा करो। ये बैंक ऐसा है, तन से मन से धन से ऐसी सेवा करके ईश्वरी। आज मुरली में बाबा ने कहा, दधी जी रूसी ने जैसी हड्डी हड्डी दिया। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद है, किस बच्चे को बाबा दुआएं देता है? तो सेवा के लिए सदा तत्पर है। तो ऐसे बच्चों को बाबा दुआ देता है, ऐसे बच्चे पर बाबा राजी रहता है। तो ये जो हमने सुना, तो औरों के लिए भी, कभी आपने अभी सुना 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा भी लास्ट दिन तक भी, अंतिम समय तक भी, हम वो सुना हमने, नहीं हम क्या कर सकते हैं? हम लास्ट घड़ी तक हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे मुख में मैं उसको सुनने के बाद रोज सोचता हूं, हम कैसे कर सकते हैं कि आज जो मुरली सुनी, जो ज्ञान है हमारे बुद्धि में वही चलता रहे। हॉस्पिटल में होते हुए भी, बीमार होते हुए भी, कभी बाय चांस कोई भी सामने आया, हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ये बीमारी है, ये दर्द है, ये दुख है, दुख का बीमारी का समस्या का वर्णन नहीं। नहीं तो किसी को पूछो, अपनी समस्या, अपना दर्द, अपना बीमारी का वर्णन है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, ये तन मेरा नहीं है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। जो ज्ञान सुना हुआ है कि अंत में वही हमारे साथ जाएगा, अंत मति सो गति, ये बाबा ने करके दिखाया। अंत में भी मुख से ज्ञान रतन सेवा करके गया। तो फॉलो फादर कहते हैं, कैसे फॉलो करेंगे, किसमें करेंगे? हमारे अंदर भी ऐसी धारणा चाहिए, कभी कभी कोई मिले, नींद में भी, बेहोशी में भी, व्यस्त होते हुए भी, सेवा करते करते व्यस्त हो, तो हमारे बुद्धि में ज्ञान सदा टपकता रहना चाहिए। तो ब्राह्मणों के हाथ में क्या दिखाते हैं? शास्त्र। तो हमारे शास्त्र कौन सा? मुरली। अगर हमारे बुद्धि में सदा, रोज सवेरे सुनते हैं हम, लेकिन आप देख लो अभी भी जितने बाबा के बच्चे बैठे हुए यहां कोई नया नहीं है। आप भी पूछ लो, जो अव्यक्त बाबा ने आकर के मुरली सुनाई, किसी ने उसके ऊपर रिवाइज किया, चिंतन किया, एक दूसरे को सुनाया, देखो बाबा ने ये बात बताई, बाबा ने ये बात बताई, पूछ लो आप। बाकी सब बातें किया, इधर उधर की बातें करेंगे, आए कहां हम, किसके लिए आए? जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाई की बात करेंगे ना, कि दुनिया की बात करेंगे? तो यहां ये विद्यालय है और ईश्वर आके पढ़ाता है। क्या पढ़ाया हमको? आप भी पढ़ो, औरों को भी, औरों से बात करो जरूर, लेकिन देखो बाबा ने आज ये कहा, इसका अर्थ ये है, डिस्कशन करो, बात करो। तो जितना करेंगे मक्खन निकलता है, बुद्धि उसी में बिजी रहते हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ है, ये पढ़ाई है हमारी, और जितने हम इस पढ़ाई में पढ़ते हैं तो बाबा भी बच्चों को देखकर खुश होता है। बाबा चमत्कार नहीं करता, यहां विधि है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती, तब कहते हैं लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे नवाब। अपने अपने बाबा आप दृष्टि दे दो, बाबा ऐसे करो, ये भावना भक्ति की है, मेहनत नहीं करना चाहता है कोई, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, बिना किए हुए कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है कभी भी। कितना भी करो आप, एक हीरे के साथ एक पत्थर रखो तो पत्थर हीरा नहीं बन सकता है, पत्थर तो पत्थर ही, लेकिन उसके साथ रहते हुए उसने उसके गुणधर्म लेना चाहिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अगर हमारा जीवन का लक्ष्य है, हम क्यों आए इधर, तो अपने पढ़ाई पर रोज, बाबा ने एक मुरली के पॉइंट लो, बहुत नहीं चाहिए, बहुत याद नहीं रख सकते, लेकिन एक कोई भी मुरली के पॉइंट ले लो, उसका मनन चिंतन करो, क्योंकि बूंद बूंद मिलकर के तालाब बनते, एकदम नहीं बनता है, एकदम कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जन्म लेते लेते हमारे अंतिम अवस्था है, आत्मा बहुत तमो प्रधान बन गई है, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं, याद नहीं रहता है। लेकिन एक मुरली के पॉइंट रखो, बार बार अपने को भी याद दिलाते रहो, औरों को भी याद दिलाता, औरों से मिलो, ओम शांति करके छोड़ना नहीं। ओम शांति कहने के बाद एक हीरे का दान दे दो उनको, तो उनकी भी उन्नति हो गई। तो बाबा कभी कभी गुलजार दादी कहती है, खुश रहो और खुशी बांटो, तो खुशी कहां मिलती है? आज भी बाबा ने कहा, बच्चे सदा खुश रहो, हर्षित रहो, कैसे रहेंगे? आप देखना एक मुरली के पॉइंट किसी को सुनाओ और उसका चेहरा देख लो आप, और आप अपने आप को भी देखना, आपको जहां मैंने आज कुछ सेवा किया, मेरे मुख से कुछ अच्छा शब्द निकला, बाबा के महावाक्य निकला, आपको भी खुशी होती है, और जो सुनता है सामने वाला उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा भी खिलता है। ये विधि है, खुश रहो और खुशी बांटने। खुशी कहां से मिलती नहीं है, नहीं तो मनुष्य को आप कितना भी 1 लाख रुपया भी दे दो ना, तो भी खुश नहीं होगा, कल और चाहिए। स्थूल वस्तु से किसी को आप चीजों से खुश नहीं कर सकते हो, ये सूक्ष्म ये अविनाशी ज्ञान रत्न ऐसा है, किसी को भी देखना आप, एक दिन प्रयोग करके देख लो, उसका चेहरा देखना, खुश आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है, ये कोई शरीर को नहीं देते आप, कोई किसी को खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, बहुत दान करते लोग, लेकिन किसको करते हो? शरीर को, एक जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम जो ज्ञान सुना रहे किसी को आप, तो वो शरीर को नहीं आत्मा को दे रहे, ये अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी आत्मा को देख रहा, आत्मा अविनाशी है, तो उसका रिजल्ट भी अविनाशी मिलता है। अगर विनाशी चीजों का आप कितने लोगों को भी दान करो, कोई भी चीजों का, वस्तु का, पैसे का, बहुत कुछ करो, अल्प काल के लिए, शरीर को दिया, हमारे सामने शरीर आता है वहां, तो शरीर के साथ कर्म बंधन बन जाता भी है, हिसाब किताब भी बन जाता है, लेना देना। तो ये अगर ज्ञान अगर आप किसी को सुनाते हो, दुआएं देते हो, आज बाबा ने कहा दुआएं दे दो, किसी को देखते ही मन में उसके आत्मा के प्रति उसका रूप रंग व्यवहार स्वभाव न देखते हुए, मतलब भौतिक रूप नहीं देख रहे हो, उनका अलौकिक रूप देख रहे हो कि ये सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, ये समझकर हर एक के प्रति हमारे मन में अगर श्रेष्ठ संकल्प निकलता है, दुआ है, तो ये हम आत्मा को दे रहे, शरीर को नहीं, ये अविनाशी बन जाती है, एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है। अगर विनाशी वस्तु किसी को मदद भी करते हो, एक का एक गुना है, क्योंकि शरीर को दे रहे हैं। इन दोनों में समझना चाहिए अंतर। हम स्थूल कितना सहयोग देते हैं और सूक्ष्म कितना करते हैं। तब बाबा ने बहुत दफा, अभी अव्यक्त मास में चल रहा है, कि बच्चे ऐसी तपस्या करो संगठित रूप में, सबके मन में एक जैसा संकल्प हो, और ऐसे ऊंच स्थिति में स्थित होकर, यानी तो ऊपर से पावरफुल वाइब्रेशन दे सकते हो, तो उस स्थिति में स्थित होना चाहिए, तब वाइब्रेशंस फैल। जैसे देखो इस हॉल में अगर चारों तरफ फैन चले तो क्या होगा, एकदम हॉल ठंडा हो जाएगा ना, एक ही फैन चल रहा है तो हॉल ठंडा होगा नहीं। जितने बाबा के बच्चे बैठे हैं, सबके मन में एक जैसा आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, अगर एक ही जैसा विचार चले, इसको कहते शुद्ध विचार, शुद्ध वाइब्रेशंस बनाएगा, इसको कहा शांति के। ये कितना भी विघन हो, किसी के भी देखो हवन के अंदर एक गीली लकड़ी भी डालो वो भी जल जाती है। किसी किसी कोई कोई इधर आए होते, कोई विघन लेके आए, कोई समस्या लेके आए, क्योंकि बाबा के दरबार में सब ठीक होगा, यहां जाएंगे तो ठीक होगा, कितना समस्या लेके आते हैं, तो वो कौन ठीक करेगा? तो बाबा ने कहा सब कुछ बाबा बच्चों के द्वारा कराता है, तो क्यों बाबा को क्यों आना है, ऊपर से भी कर सकता है, नहीं बच्चों के द्वारा कराता है। तो बच्चों को बुला के इकट्ठा इधर बिठाता है और बच्चों को प्रे सिखाता है, बच्चे ऐसे तपस्या करो, ऐसे वाइब्रेशन संकल्प करो कि आपके सभी के जो शुभ संकल्प की जो शक्ति है स्वयं की भी पीड़ा विघ्न को विनाश करेंगी और औरों को भी मदद करेंगी। इसके लिए कहा कि भगवान के साथ है, हम अकेले नहीं कर सकते, वो शिक्षा ईश्वर आके पढ़ाता है, ऐसी तपस्या करो। कभी कभी आपको लगेगा कि यहां बैठने के बदले घर में टीवी पर देख सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं, यहां क्यों आना चाहिए? देखो आप अनुभव होंगे दोनों में अंतर, वहां टीवी में देखना है करना नहीं है, यहां आकर के इस हॉल में बैठते हो आप, देखना दोनों में अंतर है कि नहीं है, है ना? यहां के देखो डायरेक्ट वाइब्रेशंस, वो नहीं है, वो देखने से कुछ नहीं होगा, देख रहे इतना ही आप सब थोड़े समय के लिए, उसके बाद जैसे कि वैसे इस वातावरण में बैठते हो। जैसे बच्चों को देखो घर में पढ़ा सकते हैं, स्कूल में क्यों भेजना चाहिए, वही किताब है घर में बैठ के पढ़ाओ, नहीं, स्कूल में सबके साथ संगठन में एक वातावरण में पढ़ते हैं, वो अंदर ध्यान वहां जाता है, बाकी इधर उधर नहीं जाएगा। तो घर में भी टीवी में देखना, यहां भी टीवी में देखना, कोई कोई बोलते हैं तो भी इस वातावरण के अंदर आपको वाइब्रेशन, देखो एक दो तीन घंटा आपको शरीर शरीर का भान कुछ भी नहीं है, ऐसा सुंदर पवित्र वातावरण में बैठे, शरीर की भी परिवर्तन आत्मा के भी परिवर्तन। जैसे धूप में बैठो गर्मी लगती है ना, ठंडी में अगर अंदर बैठो सूर्य बाहर आया हुआ है तो सूर्य शरीर के सूर्य की किरणें मिलती है, सूर्य तो आया हुआ है, आप अंदर बैठे हो नहीं, धूप में जाके बैठो बाहर सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती है, शरीर गर्म होता है ना, ठंडी में उसका वैल्यू है। ऐसे ही जब भगवान आता है अपने वाइब्रेशंस, उसको किरणें कहने में आता है, दिखाई नहीं देता है कुछ, लेकिन सारा हॉल देखना 10-15 मिनट तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बन जाता है, हर एक व्यक्ति अनुभव करता है। बाबा अपने संकल्प से बच्चों को सिखाता है आज भी, इसको कहते हैं ईश्वर की पालना। एक को ब्रह्मा बाबा को पिताश्री को बना के हमारे सामने सैंपल रखा, बच्चे आप भी गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, कर्म करो, लेकिन इस पांच विकार से, क्रोध से, तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा, ये किसके कौन करता है? देह अभिमान वाला। इसलिए गीता में भी देख लो, सिर्फ 5 पांडव ने, उसमें भी एक अर्जुन ने पूरा श्री कृष्ण को साथ दिया, बाकी भी भाई थे, किसी ने नहीं दिया। उनको क्या चाहता? संपत्ति चाहिए थी उनको, और कुछ राज्य चाहता, क्या लेके गए? स्वयं का, सबका विनाश करके लेके गए। ये समझने की बात है, ये ज्ञान है। यहां भी आज के बाद ज्ञान सुनने के बाद जीवन में जाते हो संसार में, एक लक्ष्य लेके जाओ, आज के बाद इस संसार में मेरा शब्द नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ही भगवान का हूं, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा धन, मेरा शरीर, मुझे ये बीमारी, मेरा ये दुख, नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। तब आएगा मेरा कोई नहीं तो कौन है? मेरा तो एक शुभ बाबा है, जो बाबा बार बार कहता बच्चों के दिल में कौन है पूछना, कहने में शब्दों में कहते मेरा बाबा, नहीं अभी भी मेरा बहुत कुछ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, आपने कहां से लाया, कब तक आप बच्चों को संभालेंगे, कब तक आपके बच्चे, जब तक आप हो उसके बाद मेरे नहीं। ये परिवर्तन चाहिए, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई है। अगर मेरा शब्द को खत्म करते हो आप समझ से, बोल से नहीं, देखो अंदर सुधा, आत्मा हर्षित रहती है, प्रसन्न, ये मेरा अपनी प्रसन्नता सुख को छीन लेता है, इसको रावण कहा, रावण और कुछ नहीं है, कहीं से नहीं आता है ये मेरापन जो है ना, वस्तु व्यक्ति वैभव, ये लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष, एक को गिराना एक को चढ़ाना, तो ये भगवान के बच्चे ये समझ ही नहीं है। कहते हम एक भगवान के बच्चे कहते हैं, बाबा देखो कल कितना कहता था, परसों, एक परिवार है, देखो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बैठे हैं, बाबा को बच्चों को देखकर इतना बड़ा परिवार देखकर कितनी खुशी है, तो आप पूछो हमारा एक ही बाबा है कि और भी कोई है, पूछ लो। अगर एक बाबा है, एक बाप हमको जो श्रीमत देता है, शिक्षा देता है, उस पर चलने वाले, उनको लगता है उनके मुख से सदा आता है मेरा बाबा, और बाप उनके साथ है, دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ تب دنیا میں لوگوں نے کہا ایشور جن کے ساتھ ہے ان کو آندھی طوفان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. بہت سمسیا آئیں گی, بہت وگن آئیں گے, بہت ہلائیں گے, لیکن آپ کا ایک بال بھی ہلا نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہم نے سمجھ لیا اس سنسار میں میرا کوئی نہیں ہے. تو ایک شب بابا ہے, ٹھیک ہے. ابھی اور 5 منٹ ہے, سنا بہت کچھ کرنا بھی چاہیے. ہاں جیسے کہا سنگٹت روپ میں کچھ کرو, ابھی نیند کرنے کا تو سمے نہیں ہے. تو کسی ایک بھائی نے ایک سجھاؤ دیا تھا کہ رمیش بھائی ہاسپٹل میں ہے تو سبھی مل کے سنگٹت ایک دو شبھ بھاونا دیتے ہیں, لیکن وہ سبھی کا پہنچتا نہیں ہے, ایک دو کا نہیں پہنچتا. اگر اتنے سبھی بابا کے بچے بیٹھ کر اگر ایک سنکلپ کرے, وہ سنکلپ بابا نے کہا سنگٹن کا سنکلپ جلدی کام کرتا ہے. ہم نے دیکھا دادی پرکاش منی شروع میں 1983 میں جب مدھوبن میں کانفرنس کیا تھا, سرو دھرم بڑے بڑے مہامنڈلیشور شنکراچاریہ سب آئے, 3 دن تک دادی سوئم بیٹھتی تھی, کہتے شام کو 2 گھنٹہ کوئی آواز نہیں, گیت نہیں, کچھ بھی نہیں, سائلنس میں یوگ میں بیٹھو. جو آپ تپسیا کرتے ہو شدھ سنکلپ کرتے ہو اس کے واتاورن میں وہ اے سی ہال ہو گیا. گرمی سے باہر جو سے آتے لوگ اس اے سی ہال میں جاتے ہی اپنے آپ ان کو بھی شانتی کا انوبھو ہوگا, اپنے اپنے ہوگا. یہ تو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی بھی اگر ہم سنگٹت روپ میں سنکلپ دے سکتے ہیں تو 3-5 منٹ ہے سبھی بیٹھ کر کے پہلے آتما کا, جیسے دیکھو آتما کا آواز پرماتما کے پاس جاتا ہے, شریر سمجھ کے کرو نہیں جائے گا. آپ پہلے آتم ابھیمانی بنو, آتما کا 2-3 منٹ چنتن کرو, پھر میرا کون ہے. ایک شبھ بابا, شبھ بابا آپ نے کہا میں بچوں کا دکھ دور کرتا ہوں, پتیت آتما کو پاون کرتا ہوں, مکتی جیون مکتی رہتا ہوں. بابا اس آتما کو بھی شکتی دے دو, اس آتما کو بھی ٹھیک کرو, تو سبھی کا سنکلپ پہنچتا ہے. کر سکتے ایسا کچھ کرے, سنتے بہت کچھ کرنا بھی چاہیے نا. ہاں پریوار کی اس کو کہتا ہے بابا نے ایگزامپل دیا, شیو بابا نے برہما بابا نے ایگزامپل دیا. وشو کشور بھاؤ جب بامبے میں بیمار تھا, آپریشن چل رہا تھا, بابا نے ساکار بابا نے ساری رات جگ کر سنا تھا کہ بابا کو دادا کو وشو کشور دادا کو بہت درد ہے, تو بابا ساری رات بیٹھ کر کے سکاش دے رہا تھا. تو ہم اتنا تو نہیں کر سکتے, کم سے کم پریوار کہتے ہیں پریوار میں انگول ایک ایک بوند مل گیا تو ایک بن جائے گا نا, ایک گلاس بھر جائے گا. تو سبھی مل کر کے 5 منٹ سائلنس میں بیٹھیں گے. ہاں لال لائٹ نے سفید لائٹ رکھنا, نہیں تو آنکھیں بند ہوتے دکھائی دیتا ہے. ہاں سنکلپ کرنا, سنکلپ تیور گتی سے پہنچتا ہے.
ओम शांति।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ सेवा भी करना चाहिए ना, स्व सेवा और विश्व की सेवा। ओम शांति।